महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। उसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और हम चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 पर आ गए, 71। यहाँ अंतर प्ररूपणा में जघन्य अनुभाग बंध के अंतर की बात चल रही थी और हम मार्गणाओं में देखते हुए कल हमने क्षायिक समय दृष्टि में पढ़ा था। देखो फिर पढ़ते हैं ऊपर से, क्षायिक समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समान है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि है, जघन्य क्षपक में है, अंतर नहीं है, परंतु उपशम श्रेणी में अंतर पड़ सकता है, इसलिए एक समय से लेकर अंतर में, क्योंकि मार्गणा चालू रहेगी, मरण होगा तो भी। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अब ये वेदनीय नाम और गोत्र जो है, हाँ यहाँ गोत्र में मध्यम परिणाम नहीं लेना, क्योंकि यहाँ केवल उच्च गोत्र में परिवर्तमान मध्यम जहाँ उसके ऑप्शनल भी बनते हैं वहाँ वो लेते हैं, यहाँ तो मात्र गोत्र में उच्च गोत्र ही बनता है, उसका जघन्य चौथे गुणस्थान वाला संक्लेश वाला होगा, उसका जघन्य 1 से 2 समय तक होता है, तो अजघन्य का अंतर भी 1 या 2 समय होगा। अब जघन्य का अंतर क्षायिक समित्व का जो काल है शुरुआत में और अंत में, जघन्य के अंत में नहीं, क्षायिक समित्व के अंत में नहीं लेना, क्योंकि वो संयमी होगा तो उसके इतने संक्लेश नहीं होगे, तो चौथे गुणस्थान में रहने का क्षायिक समित्व के साथ काल उसको लेना है। देखो क्या कहते हैं, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। यानी पहले वो क्षायिक समय को था, चौथे गुणस्थान वाला था, तो उसने संक्लेश में वो जघन्य किया, उच्च गोत्र का जघन्य किया, फिर बाद में संयमी हुआ, बाद में 33 सागर में गया, वहाँ चौथे गुणस्थान में रहा, वहाँ से आके भी चौथे गुणस्थान में रहा, फिर दोबारा संयम धारण करने के पहले दोनों और कुछ कम पूर्व को, तो साधिक 33 सागर। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है। अब सबका देखो, यहाँ तो उपशम श्रेणी में भी उसका बंध नहीं होगा, एक समय से अंतर्मूर्त होगा, जहाँ श्रेणी नहीं होती है ऐसी जो मार्गणा में, जैसे वेदक समय दृष्टि होगा तो उसमें वेदनीय नाम के लिए 1 से 4 समय कहेंगे और गोत्र के लिए 1 से 2 समय कहेंगे। ख्याल में आती बात, यहाँ क्षायिक समय दृष्टि है तो 11वां गुणस्थान है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर भी उपशम श्रेणी में गोत्र का बंध नहीं होगा, वो भी अंतर्मूल, वही तो मैंने कहा, अगर वेदक समय दृष्टि होता जिसमें उपशम श्रेणी नहीं है ऐसी मार्गणा में लेना है तो वहाँ गोत्र का अजघन्य 1 से 2 समय होगा, यहाँ उपशम श्रेणी है तो ग्यारहवें में बंध ही नहीं होगा, यानी अजगण्य का अंतर कब पड़ता है, या तो जगण्य कर रहा है या तो ग्यारहवें में, इसलिए एक समय से अंतर्मूर्त उपशम श्रेणी में होगा, तीनों का है। पेज नंबर 71 पर देखें, क्षायिक समय दृष्टि की, आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। यह हमने देवायु बांधने वाला मनुष्य लिया था। अजगन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक के समान, यानी दो भवों में उसने आयु बांधी है, पहले भव में 1/3 पूर्व कोटि का, दूसरे भव में 33 अगर के लास्ट में बांधी, इस तरह से ले लेना। अभी हमको विशेषार्थ पढ़ना है, कल हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था, विशेषार्थ वहां से हम शुरू करते हैं। चार घाती कर्मों के जगन्य और अजगन्य अनुभाग बंध की अंतर प्ररूपणा जिस प्रकार ओघ में कही है वह क्षायिक सम्यक में अविकल बन जाती है, क्योंकि तो यहाँ क्षपक श्रेणी भी है और उपशम श्रेणी भी है, इसलिए यह कथन ओघ के समान कहा है। वेदनी और नाम कर्म का जगन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से और गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध असंयत समय दृष्टि अवस्था में संकलेश परिणामों से होता है, ये उसका स्वामित्व बताए। यहाँ ये परिणाम एक समय के अंतर से भी हो सकते हैं और साधिक 33 सागर के अंतर से भी हो सकते हैं जगन्य के लिए। यही कारण है कि यहाँ इन तीनों कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा है। इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर, ये जरा गड़बड़ी हुई उनके लिखने में, यानी उन्होंने क्या अजगन्य का अंतर उन्होंने क्या लिखा था, अजगन्य का अंतर जगन्य भी अंतर और उत्कृष्ट अंतर जगन्य अनुभाग के काल को ध्यान में रखकर किया है, जगन्य उत्कृष्ट ये बात तो नहीं घटित होती, यहाँ तो उपशम श्रेणी में घटित होता है, क्योंकि अगर उसका काल लेंगे तो वेदिनी नाम के लिए 1/4 समय होगा और गोत्र के लिए 1/2 समय होगा, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ एक समय से अंतर्मूर्त होता है क्योंकि ग्यारहवीं की अपेक्षा लगानी है, इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ मैं बताती, इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर, एक मिनट, वो निकाले थे परंतु इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में होता है, इतना लिखना पड़ेगा। जगन्य अंतर तो कहीं पर भी हो सकता है, जगन्य का जगन्य अंतर तो कहीं पर भी होगा, परंतु जगन्य का उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में होगा। देखो ऐसा करना, इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर, वहां क्या रखना है उसको पहले बताती हूँ। इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर, जगन्य और लिखा है ना, तो जगन्य अंतर इनके जगन्य अनुभाग बंध के और उत्कृष्ट अंतर ये निकालो, वहां कुछ अलग से लिखना है बाद में, पेंसिल से करो सब जो कुछ, अभी फिर पढ़ती हूँ। इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर इनके जगन्य अनुभाग बंध के जगन्य काल को चाहिए और उत्कृष्ट निकालो,
दोनों और उत्कृष्ट,
हाँ और उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट इतना निकाल देना है, अंतर तो लिखा ही है वहां पर, उत्कृष्ट निकाल देना। देखो क्या हुआ अभी, इनके अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर इनके जगन्य अनुभाग बंध के जगन्य काल को ध्यान में रखकर कहा है, अभी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तथा हाँ एक वाक्य लिखना, तथा इनके जघन्य और जघन्य और उत्कृष्ट, सॉरी जघन्य अनुभाग का जघन्य अंत हुआ, तथा इनके उत्कृष्ट अजघन्य का, अजघन्य का नहीं अजघन्य का ही उत्कृष्ट अंत, अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर, हाँ या अभी हमने क्या लिखा है फिर से सुना, इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर वगैरह बताया, तथा उत्कृष्ट अंतर इतना ही लिखो ना, क्योंकि अजघन्य अनुभाग बंध तो लिख दिया हमने, जघन्य अंतर लिख दिया, तथा उत्कृष्ट अंतर इतना ही लिखा, तथा तथा उत्कृष्ट अंतर लिखो हमेशा, आप पेन से क्यों लिखते हो, तथा उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में घटित होता है, होता है उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त तक होता है, यानी वहां एक समय से अंतर्मूर्त कुछ भी होता है, तक नहीं लिखे तो भी, क्योंकि हमने उत्कृष्ट बताया ना तो अंतर्मूर्त होता है। फिर से अभी पूरा में पढ़ती हूँ, इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर, इनके जघन्य अनुभाग बंध के जघन्य काल को ध्यान में रखकर कहा है, तथा उत्कृष्ट अंतर उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त होता है, हो गया नहीं, आयु कर्म का अंतरकाल सुगम है, यानी वहां दोनों ही आयु का जघन्य उन्होंने स्वीकार किया, मनुष्य आयु का भी और देवायु का भी,
तो वो तो देवायु का वो तो बंद उसका, विश्व ज्यादा बंद होती
है बरोबर,
है
ना, आयु का जघन्य बरोबर, हाँ हो सकता है, इसी यही बात यहाँ ली है ना, उससे घटित हो रहा है। अब वेदक समय दृष्टि जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि एक ही बार होगा दर्शन मौखिक सपना में, इसलिए वेदक सम्यक को रहते हुए दोबारा ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अंतर्मूर्त में वो तो जगन्य किया, फिर कृतकृत्य वेदक रहा और फिर क्षायिक हो जाएगा, और जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय, जब वो दर्शन मौखिक सपना में एक समय के लिए जगन्य किया तब इसका अजगण्य का अंतर हुआ, क्योंकि वो क्षपणा का जो एक समय उसके बाद भी वो कृतकृत्य वेदक रहा कुछ काल तक, इसलिए वेदक का वेदक रहा और उसने अजगण्य किया। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अब वेदक में रहने का उत्कृष्ट काल है, वो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर होगा, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर चार समय। एक कुछ कम क्यों लिखा मालूम है ना, पूरे 66 सागर लेते हैं तो वेदक सम्यक का काल कृतकृत्य का काल लेके वो 66 सागर कहते हैं। अब इसने वेदनीय नाम के लिए और यहाँ तो वो कैसे प्रशस्त बांध रहे, पर फिर भी तत्प्राय के मध्यम परिणाम में वो जघन्य बनते हैं, तो कहते हैं जगन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर, और जगन्य क्योंकि तो श्रेणी भी नहीं कहे तो यदि आप कहेंगे दर्शन मुक्ति क्षमा वगैरह उसमें तो अधिक बंधेगा, यहाँ तो जगन्य की बात है और मध्यम परिणाम को थोड़े पहले हो गए उसके, समझ में आते हैं बस। यहाँ तो वेदक समय तो का काल पूरा हुआ तो समय मिथ्या समय जाएगा या मिथ्या समय जाएगा तो संकलेश होगी, मध्यम परिणाम उसके पूर्व में होगी। आप कहेंगे नहीं उसको शायिक बनाओ, शायिक बनाने में तो विशुद्धि बढ़ गई उसकी, तभी मध्यम परिणाम नहीं रहे, ख्याल में है ना बात। इसलिए मध्यम परिणाम के लिए कुछ कम 66 सागर लिया। अब अजगन्य की बात, वेदिनी और नाम का अजगन्य की बात है। परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले वो लीला वो उत्तर प्रकृतियों में सोचेंगे, अभी हमारे मूल प्रकृतियों में बात चल रही है। वो जब हम उत्तर प्रकृति और अल्प बहुत को पूरे प्रकृतियों को देखेंगे तभी वो अब उसमें कौन सी प्रकृति बन रही है अप्रशस्त के प्रशस्त, जैसे हमने जहाँ नीच गोत्र अभी सातार असाता दोनों बनती है तो मध्यम परिणाम में, तो यहाँ पर भी वो स्थिर अस्थिर वगैरह सब ले लेना उसमें।
अच्छा, प्रशस्त बनती है वो
बिल्कुल, क्योंकि जैसे वेदनी में क्या लगाते हैं हम सातार असाता लगाते हैं तो दोनों का ही वहाँ जगन्य हो सकता है ना, परिवर्तमान में दोनों का ही जगन्य हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि असाता का उत्कृष्ट संकलेश में होगा, साता का उत्कृष्ट विशुद्धि में होगा, दोनों का जगन्य बीच में होगा। कौन सी गति बांधता है वो कुछ नहीं, परिवर्तमान मध्यम पर परिवर्तमान है क्या वो, उनके लिए वो ध्रुवबंदी है, यहाँ परिवर्तमान मध्यम परिणामों को ले लेना। क्योंकि उनके लिए सर्व संकलेश में वो मनुष्य गति तो जगन्य बंधेगी,
परिवर्तमान वहाँ संकलेश में है कि विशुद्धि।
देखो एक ही प्रकृति जहाँ देव नार की सम्य दृष्टि है मनुष्य गति ही बांध रहे हैं तो सर्व संकलेश में मनुष्य गति का जगन्य बांधेंगे, विशुद्धि में ज्यादा बांधेंगे, और वो कब बांधेंगे तो मिथ्या तो के सन्मुख वाले को बांधेंगे, यहाँ वो बात नहीं लेना है। परिवर्तमान मध्यम परिणामों को लेते हैं तो प्रतिपक्ष वाले जो लौट लौट कर बनते हैं उसको लेना है, क्योंकि उनके लिए तो अपने अपने जो गतियाँ हैं उनके लिए देवनारकी के लिए मनुष्य गति ध्रुवबंदी है समय दृष्टि के लिए। अब देखो यहाँ यहाँ 72 पेज पर सेकंड लाइन, अब वेदिनी नाम की बात हमने पढ़ी, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 4 समय, शायिक समय के काल में मैंने इसको गौर किया था, वहाँ तो 11वां गुणस्थान है, यहाँ तो वो तो है ही नहीं है, तो केवल जहाँ जघन्य का बंध है तब अजघन्य का अंतर है, तो मध्यम परिणाम में जघन्य बंध लगातार 4 समय तक हो सकता है, कहीं पर भी मध्यम परिणाम कहीं पर भी होते हैं, 4 से 7 बजे तक कहीं पर भी मध्यम परिणाम, जैसे हमने देखा ना एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर भी, सातवें में नहीं लेना क्योंकि असाता जहाँ तक बनती है वहाँ तक लेना, साता असाता दोनों बनते हैं ना। हाँ देखो अभी गोत्र की आयु की बात, तीसरी लाइन, आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का भंग वेदनीय कर्म के समान है, जो अभी हमने देखा था, क्योंकि जो आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध वेदक सम्यक में पहले भव में एक बार किया और अंतिम भव में यानी कुछ कम 66 सागर एक बार, जघन्य का ऐसा तो एक समय का अंतर हो ही सकता है और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर उसके लगातार रहने का काल है कुछ कम 66 सागर, अजघन्य का एक समय के अंतर से अजघन्य कर ही सकता है, और यहाँ अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर दो भाव में लेना पड़ेगा, साधिक 33 सागर लेंगे, वेदक समय दृष्टि है ना, हाँ, तो 33 सागर की आयु बांधेगा तो साधक 33 सागर हो जाएगा, क्योंकि 33 सागर की आयु बांधे तो अंतर्मूर्तक तो जघन्य नहीं करेगा है, या तो वो तो उत्कृष्ट करता है, यहाँ तो जघन्य की बात, जघन्य की बात। यानी वो जघन्य नहीं, वो सारा अजघन्य ही है, इसलिए वो 33 सागर घटित होगा। यानी भले उत्कृष्ट कहो उसको, वो अजघन्य ही कहलाता है। गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, हमने देखा था ना वेदक। उच्च गोत्र ही बांधता है, बिल्कुल, बाकी अजघन्य होगा मिथ्या तो में जाएंगे ना, मार्गना चेंज हो जाएगी, इसलिए जघन्य अंतिम समय में है।
हाँ, हाँ, ओके।
दोनों का अंतर नहीं है, ख्याल में आती। चौथे वाला मिथ्या तो के सम्मुख है, तब उसका जघन्य होगा तो उसकी मार्गना पलट जाएगी। यानी मिथ्यात्व के सम्मुख वाला जो अंतिम समय वर्ती है वो जघन्य जघन्य बंद करेगा। विशेषण, जो वेदक समय दृष्टि जीव सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत होता है, उसी के चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंद होता है, इसलिए यहाँ चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद के अंतर का निषेध किया है। ये सर्व विशुद्ध है, क्षपणा दर्शन मुखी क्षपणा, देखो देखो समझ में, क्योंकि वेदक समय के साथ श्रेणी का तो चढ़ता नहीं है, और श्रेणी के सन्मुख अवस्था में उसका तो द्वितीयोपशम हो जाता है। अभी जहाँ तीन करण परिणाम होते हैं, तो वेदक समय में तीन करण परिणाम कब हो गए, जब दर्शनों की क्षपणा कर रहे तब। वैसे तीन करण परिणाम उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले द्वितीयोपशम के साथ भी हो गए, पर द्वितीय उपशम करेगा तो वेदक में से उपशम ही हो जाएगा। देखो तीन करण जहाँ उसको अनंत अनुबंधी की विसर्जना करता है, फिर वो द्वितीय उपशम समय को प्राप्त करता है, इस तरह से बना लेगा। कहाँ हो सकते हैं तीन करण परिणाम, अनंत अनुबंधी की विसर्जना में, फिर उपशम श्रेणी चढ़ते समय, और फिर वहाँ द्वितीय उपशम किया तभी। और यानी क्योंकि अनंतानुबंधी के विसर्जन के लिए तीन करण अलग, हाँ दशम मुनि की क्षपणा के अलग, तो यहाँ विशुद्धि और ज्यादा है। तो मैक्सिमम विशुद्धि कहाँ है, तो क्षपणा के अंतिम समय, अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय। पितलेशा में भी हमने ऐसे देखा, शुक्ल लेशा में तो बिल्कुल क्षपक अंतिम समय में विशुद्धि होती है, इसलिए सोचना इस तरह से। छठे से सातवें की विशुद्धि ज्यादा है ना,
नहीं
है,
नहीं है, ज्यादा है।
तो सातवें वाला जो क्षपणा करेगा उसको लेना,
छठे गुणस्थान में हो सकती है,
अरे चौथे में भी हो सकती है, तो वहाँ विशुद्धि कम होगी कि नहीं। चारों ही गुणस्थानों में है, परंतु अपनी अपनी विशुद्धि के योग्य परिणाम होंगे कि नहीं होंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, फिर से पढ़ती, जो वेदक विशेषार्थ, जो वेदक समय दृष्टि जीव सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत होता है, यानी वो दर्शन मुख की सपना वाला जीव लिया, क्योंकि उसके बाद में भी अंतर्मूर्त तक तो वेदक रहता है, इसलिए अंतर हो जाता है अजघन्य का भी। उसी के चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध होता है, इसलिए यहाँ चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध के अंतर का निषेध किया है, तथा इसके चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल की बात है, एक समय होने से यहाँ अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा। समझ में आई बात, वेदनीय, यहाँ वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है। यह परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से, यहाँ अंतर बता रहे, यानी जघन्य का अंतर एक समय से अधिक कुछ कम छासर सागर के अंतर से, यानी वेद सम्यक में रहने का उत्कृष्ट काल छासर सागर, इसलिए कुछ कम कह दिया, उपलब्ध होते। इसलिए इन दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम छासर सागर कहा। इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, जो जघन्य का काल है। उत्कृष्ट अंतर चार समय है, जो जघन्य का काल है। यह स्पष्ट ही है। यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग का बंध मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के हो सकता है, वो भी चौथे गुणस्थान वाला है। इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतर का निषेध किया है शेष कथन सुगम में। बाकी सभी जो वेद समय दृष्टि जीव है, रेगुलर जो है, वो तो अजघन्य ही कर रहे हैं। मिथ्यात्व के अभिमुख वाला अंतिम समय में जघन्य करेगा। यह हो गई वेदक सम्यक की मार्गना। उपशम सम्य दृष्टि जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। अब उपशम सम्यक में चार घाती कर्मों का तेजल आप बताना, जघन्य कहाँ होगा? शपक नहीं, उपशम है। उपशम श्रेणी में बताना, दसवें गुणस्थान। उपशम श्रेणी में लिखो तो चलेगा। उपशम श्रेणी में बंध के अंत में, अंतिम बंध जो है उसका वो तो उत्कृष्ट हो जाएगा ना। हमको जघन्य करना है। जघन्य कब होगा? दसवें के अंत में और नौवे के अंत में। हाँ, तीन घाती के लिए दसवें के अंत में और मोह का नौवे के अंत में। यानी उपशम वो द्वितीय उपशम वाला है ना, द्वितीय उपशम वाला है और वहां उसने जघन्य किया। चार घाती कर्म कैसे है? अप्रशस्त कर्म है। उपशम औपशमिक समय दृष्टि के लिए जघन्य कहाँ होगा? दसवें के अंत में या नौवे के अंत में। अब गोत्र कर्म का उल्टा सोचना है। गोत्र तो उच्च गोत्र ही बन रहा है, तो उपशम सम्यक्व में से चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व के सम्मुख है, उसका जघन्य होगा, तो उसका भी अंतर नहीं होगा। जघन्य चढ़ने वाले से उतरने वाले का बहुत ज्यादा होगा। गोत्र की बात, उपशम समय वाला जो मिथ्यात्व में जाने वाला जीव है वही जघन्य करेगा। अंतिम समय ने उपशम समय तो का अंतिम समय लिया, उसके बाद तो मिथ्या दृष्टि होने वाला है, मार्गना बदल जाएगी, उसका जघन्य है। तो बाकी जीवों का क्या है? अजघन्य है, या बाकी समयों तक अजघन्य है। दोनों का अंतर नहीं होगा। अंतर का अर्थ फिर दोबारा अजघन्य बंधना चाहिए, तब अंतर होना चाहिए। ना जघन्य का अंतर होगा, ना अजघन्य का अंतर होगा। अजघन्य का अंतर उपशम श्रेणी में हो सकता है। अजघन्य का वेदक समय दृष्टि के लिए क्या देखा था? अजघन्य का और जघन्य का अंतर में। हाँ, अब यहाँ क्या कह रहे हैं? ग्यारहवा गुणस्थान है बीच में, तो यहाँ अंतर होगा। जिसे क्षायिक में और उपशम समय में अंतर ले लिया एक समय से अंतर मोड़ तक। देखो क्या कहते हैं, हम फिर पढ़ते देखो। उपशम समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल लोक के समान है, यानी वो तो ग्यारहवें गुणस्थान और दसवां मोहनी के लिए दस ग्यारह दस ओक के समान है। एक अंतर, एक समय से अंतर मूल। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। देखो ये तो मध्यम परिणाम में होते हैं, तो एक बार जघन्य किया शुरुआत में, क्योंकि उपशम समय तो का काल ही अंतर मूर्त है। मैंने शुरुआत में किया और अंत में किया, तो अंतर अंतर मूर्त हुआ। और एक समय का अंतर तो ऐसे भी घटित हो ही जाता है। और वेदनीय नाम का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त लिया, ये कहाँ पर? मैं लक्ष्मी उत्कृष्ट अंत श्रेणी में 10वें 11वें बंद ही नहीं हुआ। हाँ 11वां गुणस्थान, 3 के लिए 11वां, मौनी के लिए 10 11 दोनों। देखो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त क्यों? क्योंकि उपशम समेकों का काल अंतर्मूर्त है। अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त क्यों? 10 11वें विशेषार्थ। अब आयु का तो सवाल नहीं, यहाँ बनती नहीं है। उपशम समय दृष्टि के 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध उपशम श्रेणी में चढ़ते समय ने अंत में हो, यानी 10वें के अंत में, यानी 9 या 10 जो यथायुगी से। गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है, क्योंकि उसकी हाँ देखो आप कहेंगे दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो बीच में उपशम समय तो नहीं रहा, द्वितीय उपशम से फिर वेदक होगा और फिर द्वितीय उपशम होगा, तब दोबारा श्रेणी चढ़ सकता है, तो मार्गणा अंतर्मूल तक ही रहेगी, यानी एक ही बार वो जघन्य करेगा। और गोत्र कर्म का जघन्य मिथ्यात्व के अभिमुख, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मार्गणा पलटेगी। अब अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल लोक के समान है, यानी एक समय से अंतर्मूर्त हमने देखा था, नहीं विशेषार्थ पढ़ रही थी ना मैं, सॉरी नीचे मैं ऊपर गई, फिर दोबारा पढ़ू मैं। उपशम समय दृष्टि के 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध उपशम श्रेणी में चढ़ते समय, यानी जो हमने देखा 9वें 10वें के अंत में, और गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्यात्व के अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है, ये परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से संभव है। मैंने हाँ जघन्य कहीं पर भी हो सकता है अंतर्मूर्त के अंतर से, क्योंकि अंतर्मूर्त के अंतर क्योंकि उपशम समेकों का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए तो इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, तथा इनका अजघन्य अनुभाग बंध कम से कम एक समय तक और शांत मोह गुण स्थान की अपेक्षा अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल तक नहीं होता की बात है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग बंध का भी जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा। वेदिनीय नाम के जघन्य के लिए तो मध्यम परिणाम है, इसलिए उपशम समेकत्व का उत्कृष्ट काल लिया, और अजघन्य के अंतर के लिए उपशम श्रेणी में जहां बंध ही नहीं किया वहां लिया। अजघन्य का तो उसका भी गोत्र का भी अजघन्य वहाँ श्रेणी में होता है, वो तो भी बता दिया था। अब आगे
जघन्य तो संकेश में होगा,
किसका?
गोत्र का।
अजघन्य 11वें में होता है, जघन्य का तो अंतर नहीं था, समझ नहीं। अब इस अजघन्य का ओके सामान्य एक समय से अंतर मोड़, क्योंकि गोत्र का बंद ही नहीं ना 11वें में, वैसा लेना। सासाधन समय दृष्टि जीवों में 4 घाती कर्म और गोत्र कर्म के। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। हाँ नोट बाद में बताएंगे हम। हाँ गोत्र कर्म जो है ना वहाँ तो शासादन समय दृष्टि कौन सा गोत्र बांधेगा, दोनों बांधते हैं तो उसका जघन्य किसका होगा, नीच गोत्र का जघन्य होगा है ना। तो अंतर्मूर्त में लौटकर फिर बांध सकता है जघन्य। और चार घाती कर्मों का भी विशुद्ध में जघन्य होगा। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि विशुद्धि लगातार दो ही समय तक हो सकती है। और गोत्र कर्म के लिए कहाँ लेना है ना, गोत्र कर्म का जघन्य सातवें गुणस्थान का नारके लेना पड़ेगा, सातवें नरक का नारके लेना पड़ेगा, सातवें नरक का नारके लेना पड़ेगा। हाँ पर उसका जघन्य का अंतर कैसे घटित होगा, वो तो हमने लिख लिया है लास्ट टाइम कि 424 पर ध्रुवबंदी के अंतर का निषेध किया है। पर गोत्र कर्म इन जनरल तो सारी ध्रुवबंदी है ना, आयु को छोड़कर मूल प्रकृति सारी ध्रुवबंदी है, वो बात सोचेंगे बाद में। पहले ये क्या कहते, देखो चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अंतर तो हो जाता है, गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर में। हाँ नारके आया है शासादन में है तो उसकी दो बार विशुद्धि हो सकती है, पहले समय में विशुद्ध ऐसा नहीं लिखा, नहीं तो पहले समय अगर विशुद्ध होता तो दोबारा विशुद्धि कैसे होती, ये कहीं पर भी घटित किया है। सब में होगा, घाते में भी होगा और गत्र में होगा। कहाँ पर वेदनी आयु और नाम कर्म के गोत्र अलग लिया, गोत्र कर्म के जघन्य अजघन्य, फिर यहाँ जघन्य क्यों लिया, एक मिनट। शासन घाटी चार बोध जह जह एक उक्त संत में अजह बोध जह अजह नथ्य अंतरम सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नार के लिया था हमने, इन्होंने क्या लिखा
कहते हैं पेट में खोप व्यक्ति को अपने दाकार घाती कर्म का तो निश्चय की है, सर्व विशुद्ध अवस्था एक ही बार होती है, कर्तव्य नहीं होता है।
वो 424 के बाद मैंने लास्ट टाइम बताई थी, वहाँ हमने लिखी है वो ध्रुवबंदी के अंतर का निषेध किया था 424 पर। घाती कर्म तो ध्रुवबंदी है ना, परंतु ध्रुवबंदी में हाँ देखो देखो 424 पर क्या लिखा है, ध्रुवबंदी प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है।
क्योंकि आपने जो तिजियन गति फ्री थे उसमें तिजियन गति बच्चा को जो है बीच होता वो लेना है, उसका भी अंतर का निश्चय
बंद करना पड़ेगा। हाँ करो जरूर से है ना बारिश। स्वामी तू निकालो दो सौ छत्तीस जरा 236 निकालो। अभी जरा हम स्वामित्व देख रहे साधन सम्यक्त्व में 235 वो सर्वविशुद्ध इतना ही लिया। और बाकी परिवर्तमान मध्यम तो ये तो ठीक है। उच्च गोत्र में सातवें नरक का नार की छोड़ कर है। नीच गोत्र अलग बताएंगे ना। हिरेंज गति और नीच गोत्र नहीं, उससे भी सर्व विशुद्ध ने वो पहले समय में लेना क्या ऐसा भी है ना। हाँ, हाँ। इसीलिए अंतर नहीं बताते हैं। क्योंकि वो मिथ्या तो के अभिमुख ही जीव है तो उसके तो विशुद्धि शुरुआत में होगी, बाद में उसकी तो संक्लेश होता रहेगा। परंतु शुरुआत में कहीं पर भी हो सकती है, परंतु यहाँ अंतर घटित किया चार घाती कर्मों के लिए। पहले तो गोत्र के लिए भी लिखा और बाद में गोत्र का निषेध किया। वो किया है 424 पेज पर किया है, यहाँ तो स्वीकार किया है, यही तो कह रहे हैं। सासने गादी चतुर जह जह समुक्त संतो मुक्त यानी उन एक ही इसमें उनका कंट्रोवर्सी। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के देखो सम्यक मिथ्यात्व में विशेषार्थ में बताया कि उसमें अंतर नहीं है। वो तो सम्यक के अनुभव को सम्यक वाला जीव है यानी। इसीलिए हमने लिखा था ना घटी कर्म में अंतर होगा ना गोत्र के अंतर होगा। जघन्य का जघन्य का अंतर नहीं होगा तो अजघन्य का भी अंतर नहीं हो सकता। यानी उसमें ऐसा होगा जघन्य और अजघन्य का अंतर नहीं हो सकता, यही बात होगी उसमें। यहाँ तो ठीक है गोत्र का तो फिर से दोबारा लिखा है। सर्व विशुद्ध सातवीं पृथ्वी का नारकी लेना है 25 में 25 नहीं, पर हमने उत्कृष्ट में तो संकलेश कहीं पर भी लिया था 25 में स्वामी का सर्व विशुद्ध लिया ना चारों गति का। सर्वविशुद्ध तो इसमें आते ही होना चाहिए सर्वविशुद्ध। हाँ वो देखा था हमने और उत्कृष्ट के लिए भी देखा था शायद। हाँ। उत्कृष्ट के प्रकरण में देख उत्कृष्ट का अंतर देख लो साधन में, उसमें तो उल्टा नक्की कर सकते हैं ना। जघन्य तो हम गाती के लिए करेंगे, यहाँ तो एक मिनट संसाधन लेना, पेज नंबर 56। कितना है
जघन्य काल है, एक समय से दो समय हो रहा है, जघन्य एक समय से छह आगे,
तो शुरुआत में एक समय से दो समय हुआ ना, पर उससे भी वो काल के बीच में होता है कि नहीं होता, ये नहीं, वो काल कब हो सकता है, इन बिटवीन कभी भी हो सकता है क्या? अभी 56 में जो संसाधन समय उत्कृष्ट की बात है, अनुत्कृष्ट का अंतर बताया है, एक समय उत्कृष्ट दो समय, वो ठीक है, संकलेश कहीं पर भी होता है, हमने उसको घटित किया था। वो उत्कृष्ट और जघन्य में अंतर तो पड़ेगा, वो अलग बात होती है। चार घाती कर्मों का तो बराबर है,
हाँ,
उसका अंतर नहीं होता,
नहीं होगा।
यहाँ क्वेरी अंतर नहीं है ऐसा लिख के रखो, और क्या,
हमने क्वेश्चन मार्क
ही लिखा है, लास्ट टाइम तो लिखा ही लिखा हमने,
और लास्ट में लिखा भी अंतर नहीं है तो पता नहीं,
वो गोत्र में तो लिखा ही है। यहाँ गोत्र कर्म लिखा है वो रिपीट है इसलिए निकाला, क्योंकि गोत्र अलग से बताया है, घाती कर्मों के जघन्य अजघन्य का अंतर नहीं है ऐसा क्वेरी करके लिखे देखो। गोत्र की बात नहीं चल रही, चार घाती कर्म की चल रही। सासादर में जघन्य किसका है, वो हम सातवें नरक का नारके के अन्य ही नहीं, जिसके है उसका जघन्य, वो जो जघन्य नहीं वो सारे अजघन्य ही है, तो अन्यत्र अजघन्य का अंतर कैसे होगा, सारे अजघन्य ही कर रहे हैं, सातवें नरक में ही जघन्य होता है,
तो बाकी अजघन्य,
बाकी तो अजघन्य ही है, तो वहां तो जघन्य का अंतर तो है ही नहीं। और चार घाती कर्मों का जघन्य उसका भी अंतर नहीं बताया, ये अंतर नहीं ऐसा हमने क्वेरी करके रखा है वहां पर, मैंने ये पूरी जो तीन लाइन है ना उसके लिए ये हमने लिखा। अब तीसरी लाइन में मैंने दूसरी लाइन से वो ब्रैकेट चालू करना, उसके बदले लिखना है क्वेरी, चार घाती कर्मों का जघन्य अजघन्य का अंतर नहीं है, वेदनीय आयु और नाम कर्म के, जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर मोल, क्योंकि एक ही बार आयु बांधी, उसमें जघन्य कहीं पर भी कर सकता है, एक समय के अंतर से किया, अंतर्मूल के अंतर से किया, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय, जो जघन्य का लगातार काल है वो अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर हुआ, गोत्र कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, वो भी हमने देख लिया। विशेषण सासाधन समय दृष्टि जीवों में, अभी अंतर्मूल की अपेक्षा से वो विशेषार्थ लिखेंगे, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध चारों गतियों में सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है, यथा ये परिणाम कम से कम एक समय के अंतर से अधिक अंतर्मूल के अंतर से उपलब्ध होते हैं, अगर इसकी विशुद्धि कहीं पर भी होती है, हाँ, तो एक समय और अंतर्मूल, क्योंकि सासाधन का काल कहा तो अंतर्मूल क्यों का, कुछ कम छवावली क्यों नहीं कहा, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का ये भी हो सकता है कि पहला जो अंतर्मूर्त है वो विशुद्धि वाला है। जैसे मनुष्य तिलेंचो में देखते हैं पहले अंतर्मूर्त में मात्र देवगति का ही बंद होता है इस तरह से, तो उसमें विशुद्धि फिर दोबारा उतनी हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, परंतु वो ज्ञानावरण वगैरह वहाँ तो हमने बिल्कुल उसका स्पष्ट निषेध किया था उत्तर प्रकृतियों के अंतर में, वो तो हमने लिख लिया है लास्ट टाइम। हाँ, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, परंतु उसका निषेध वहां पर जाके किया है 424 पर। इनके अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यह स्पष्ट ही है, परंतु अगर जघन्य का अंतर नहीं है तो अजघन्य का भी अंतर नहीं होगा। यानी इसके लिए क्वेरी तो हमने रखा ही है। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंद चारों गतियों में मध्यम परिणामों से, और आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंद पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणामों से होता है। अभी पता नहीं है ना, पर्याप्त जीव करता है इतना ही लेना है, क्योंकि यहाँ अपर्याप्त जीव तो होते ही नहीं है ना, ऐसा लगता है। यतः परिणाम भी कम से कम एक समय के अंतर से और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त के अंतर से होते हैं, क्योंकि आयु का बंध अंतर्मूर्त तक ही होता है। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, और जघन्य का अंतर तो एक समय से चार समय होगा, शेष कथन सुगम है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में वेदनीय और नाम कर्म का भंग सासाधन सम्य दृष्टि जीवों के समान है, यानी मध्यम परिणाम तो वो कभी भी हो सकते हैं। तो जघन्य अंतर कितना होगा मध्यम परिणाम का, एक समय, उत्कृष्ट अंतर समय मिथ्यात्व का काल है अंतर्मूर्त, शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंद का अंतर काल नहीं है। वेदनीय नाम लिया, गोत्र भी यहाँ परिवर्तन, यहाँ तो उच्च गोत्र ही बन रहा है, तो उच्च गोत्र का जघन्य कब होगा, मिथ्यात्व के सन्मुख होगा, समय मिथ्या दृष्टि है, समय मिथ्या दृष्टि लगातार उच्च गोत्र ही बांध रहा है, वो विशुद्धि ज्यादा है, तो उच्च गोत्र का अनुभव और बढ़ेगा, उसका जघन्य कब होगा, मिथ्यात्व के सन्मुख, और चार घाती का जघन्य कब होगा, सम्यक्त्व के सन्मुख। यानी चार घाती का जघन्य है तो सम्यक्त्व के सन्मुख लिखा है ना, हाँ विशेषण लिखेंगे। देखो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के, तथा गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध उत्कृष्ट संकलेश वाले मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के होता है, क्योंकि उच्च गोत्र ही बंध रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सासाधन में तो सर्व विशुद्ध वाला लिया था सातवें नरक का नारकी, क्योंकि वहां निज गोत्र बन रहा है, और यहाँ कहते हैं कि उच्च गोत्र में जघन्य कब होगा, समय मिथ्यात्व में उच्च गोत्र ही बन रहा है सर्व संकलेश में, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। यहाँ तो समझ में आती है बात है, तो सासाधन में कुछ गड़बड़ी लगती है, इस ये हो गया। वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होने के कारण इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल सासाधन समय दृष्टि के समान बन जाने से वह उनके समान कहा है। तो उसमें हमने देखा था कि जघन्य का अंतर एक समय से अंतर्मूर्त, हाँ एक समय से चार समय। अब संगी जीवों में ये मार्गणा कौन सी है, संगी की, तो संगी में हमको उसकी काय स्थिति भी होना मालूम होनी चाहिए। तो संगी जीवों में पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान है, क्योंकि संगी जीवों में एक शपक श्रेणी है, तो चार घाती कर्मों के जघन्य का अंतर नहीं होगा। अजघन्य का ग्यारहवे में होगा। अब ये चार घाती की बात होगी, अब दूसरी की बात है। अभी संगी जीवों में वेदनीय नाम का और आयु का, अभी जघन्य के लिए सुनो, फिर मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो शुरुआत में संगी संगी की बात। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने आगे गए नहीं, हमने एक ही वाक्य पढ़ा कि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान है। उसमें हमने क्या देखा कि चार घाती कर्मों के जघन्य का अंतर नहीं है, एक शपक में अंतर में होता है, और जघन्य का अंतर ग्यारहवे में होता है, एक समय से अंतर में। ये तो चार घाती हो गए। अब वेदनीय और नाम दो को ले लो, तो वो मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो जघन्य का उत्कृष्ट अंतर काय स्थिति कुछ कम लेना, तो सौ सागर पृथक को लेना संगी जीवों में। यानी शुरुआत में जरा सुनो, लोगों को सुनने दो, शुरुआत में एक बार जघन्य किया, अंत में एक बार जघन्य किया, किसका? वेदनीय नाम का। आयु में भी जघन्य आयु शुरुआत में एक बार बांधी, अंत में एक बार बांधी, वो भी ऐसे ही लेना। अब गोत्र रहा, गोत्र का जघन्य कौन करता है? हमने हमेशा देखा था सातवें नरक का नारकी जो है, हाँ, तो उसका जघन्य का जघन्य अंतर कितना होगा? अंतर में। और उत्कृष्ट अंतर वही सौ सागर पृथक का कुछ कम। अब उसमें अजघन्य का अंतर, अजघन्य का अंतर कितना होगा? एक ही समय होगा केवल, जब वो जघन्य कर रहा है एक समय के लिए उसने, एक समय तो होता है, और वो ग्यारहवें गुणस्थान में तो अंतर्मूल तक भी होगा, या तो यहाँ एक समय होगा और यहाँ अंतर, एक समय से अंतर में।
जघन्य का अंतर एक ही समय होगा,
क्यों?
क्योंकि जघन्य तो एक ही समय,
ग्यारहवें में क्यों नहीं होगा?
एक समय का अंतर
ग्यारहवें में होगा ना, गोत्र उच्च गोत्र बन रहा है, वो भले उत्कृष्ट है परंतु वो अजघन्य ही कहलाएगा ना। हम संगी मार्गणा देख रहे 73 पेज पर, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान है, तो हमने चार घाती का देखा, वेदनीय नाम का देखा, आयु का देखा, गोत्र का देखा। असंगी जीवों में वही सातवें नरक में हमने देखा था सम्यक के सम्मोह, एक समय के लिए जघन्य होता है, हाँ, तो फिर जघन्य दोबारा कब होगा? अंतर्मूर्त के बाद। तो जघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त देखा, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम सौ सागर पृथक को लिया, और जघन्य में तो ग्यारहवें गुणस्थान में एक समय से अंतर्मूर्त। पंचेंद्रिय पर्याप्त वहां देखा था ना हमने 62 पेज पर, देख लो जो अभी हमने देखा तो बराबर है कि नहीं। ओके समान वहां बताया था जघन्य अजघन्य, क्योंकि चार घाती कर्मों का भी अजघन्य ग्यारहवें गुणस्थान में होता है। वेदनी आयु नाम का काय स्थिति कहा? इनकी काय स्थिति उनकी काय स्थिति जुदी जो है, परंतु वो तो सौ सागर पृथक है, पंचेंद्रिय पर्याप्त में इतनी होती। अजघन्य का वो के समान है, अजघन्य में आयु को तो हम देखते दो भाव लेते हैं साधिक तेती सागर के, और आयु का जघन्य अंतर, जघन्य का जघन्य अंतर एक समय होता है। अब जघन्य का उत्कृष्ट अंतर वही सौ सागर पृथक होगा, और अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय, अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर दो भाव लेना, तो साधिक तेती सागर आयु के लिए। अब ये संगी की हो गई हमारी बात, अब हम असंगी की देखेंगे। असंगी जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के लिए सर्वविशुद्ध बादर अग्नि का एक वायु का एक लेना पड़ेगा असंगी में, और चार घाती कर्म में किसको लेना, सर्वविशुद्ध कौन होगा? हाँ, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होगा ना। चार घाती कर्मों के लिए विशुद्धि ज्यादा होगी पंचेंद्रिय। गोत्र कर्म के लिए वो बादर अग्नि का एक वायु का एक लेना। ये जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमा है। क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय में से नीचे के चतुरेन्द्रिय तक भटकने का काल लेना, और गोत्र के लिए मादर यानी अग्नि का एक वायु का एक को छोड़कर अन्य पर्याय में लेना, वो अनंत काल होता है। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय। क्योंकि अभी असंगी है, यहाँ तो कोई ग्यारहवा गुणस्थान नहीं कि जहाँ बंध ही नहीं हुए, बंध तो हर समय होता ही रहता है। तो उसका जघन्य जब काल है वो अजघन्य का अंतर होगा। वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर काल ओग के समान है, यानी एक समय से असंख्यात लोकों का। भले असंगी में रहने का काल अनंत काल है, फिर भी असंख्यात लोक काल के बाद वो लौट कर वो परिणाम हो गए ही वो जघन्य का बंध करने योग्य परिणाम। क्योंकि वो तो मध्यम परिणाम वगैरह वगैरह जो है ना, इनका जघन्य बंध होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर चार समय है। आयु में अलग देखना है, आयु में दो भावों में बंधनी चाहिए तो कितना होगा? असंगी के दो बड़े भाव लेना, पूर्व कोटि वाला बंथर, पूर्व कोटि और वो एक पूर्व कोटि कुछ कम। तो ये वेदनी और नाम के लिए एक समय से चार समय, और इतनी विशेषता है कि आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक एक पूर्व कोटि है। साधिक में वो पूर्व भाव में बंथर पूर्व कोटि पहले आयु का बंध करके रुका तो अंतर्मूर्त वहां माइनस हुआ, दूसरे भाव में पूर्व कोटि के लास्ट में अंतर्मूर्त पहले आयु बांधे तो वो भी अंतर्मूर्त माइनस हुआ, इसलिए कुछ कम कर दिया। उन सब मिलकर उसको साधिक एक पूर्व कोटि कहेंगे। अब इसी का विशेषांक, असंगियों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतर एकेंद्रियों की मुख्यता से कहा है। एकेंद्रियों की मुख्यता से का अर्थ है तो उसका जघन्य का अंतर एकेंद्रियों में रहने की मुख्यता से, ऐसा नहीं, एकेंद्रियों की मुख्यता से एकेंद्रियों के काल की मुख्यता लेना, और बादर वायु का एक अन्य कायकों की अपेक्षा लेना। इसलिए इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अनंत काल बन जाता है। इसी प्रकार अन्य कर्मों का अंतर भी अपने अपने स्वामित्व को ध्यान में लेकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर लाते समय वह साधिक एक पूर्व कोटि प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की अपेक्षा ही यह अंतर प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। यानी पहले भाव में आयु बांधी, दूसरे भाव में लास्ट में बांधी। अब 74 पृष्ठ पर आना, आहारक जीवों में आहारक ने रहने का काल कितना है? अंगुल का संख्या तो आहारक जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य का अंतर होगा क्या? नहीं होगा, उक्षपक में होगा तो जघन्य का अंतर नहीं। अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर ओग के समान है, कहाँ होगा? ग्यारहवें गुणस्थान में। तो जघन्य का तो अंतर नहीं होगा, और अजघन्य का अंतर एक समय से अंतर्मूर्त होगा, वेदनीय आयु और नाम कर्म के। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। अब इसके काय स्थिति लेना और उत्कृष्ट अंतर अंगुल का असंख्यात भाग प्रमाण। ओग में होते तो असंख्यात लोग कहाँ था, तो असंख्यात लोग बड़ा के अंगुल का संख्यात। अरे वो लोग कितना बड़ा उसको असंख्यात गुना किया और अंगुल कितना छोटा उसका असंख्यात भाग किया। अजघन्य अनुभाग बंद का अंतरकाल ओग के समान है। वेदनी आयु और नाम कर्म का आयु के अजघन्य के लिए अलग सोचते हम, है ना, क्योंकि हमारा आहारक जीव है। तो अजघन्य अनुभाग बंद का अंतरकाल ओग के समान है। वेदनी और नाम के लिए क्या लिखा, एक से चार समय नहीं, अंतर्मूर्त भी होगा ना ग्यारहवें में। हाँ, वेदनीय और नाम एक समय से अंतर्मोर। हाँ, आयु के लिए एक समय और साधिक 33 साल। आप क्या कह रहे,
दो भव।
हाँ, पर आहार के नैनी वो जैसे हमने इसमें देखा, किसमें, ओग में देखा था, दो भव लिए ना, वंतर पूर्व कोटि और वहां 33 सागर मिलकर साधिक 33 सागर हो जाएगा। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, वही सातवें नरक में दो बार सम्यक तो प्राप्त किया बीच में गिरकर। उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यानी पहले भव में वो सातवें नरक में और फिर अंगुल का असंख्यात विभाग में फिर वो सातवें नरक में गया, ऐसा जीव लिया और उसने फिर जघन्य किया। ये गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओग के समान है। एक समय से अंतर्मूर्त, क्योंकि ग्यारहवें गुण स्थान में लेना। विशेषार्थ आहारक की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। आहार पने रहने का उत्कृष्ट काल, उसको उसकी काय स्थिति कहते हैं। आहार का अर्थ समझते हैं ना, ये मोड़ वाली गति से नहीं गया, मरकर इशु गति यानी रुजु गति से हर बार जन्म लिया अन्यत्र, बीच में कारमान का योगी अनाहारक हुआ ही नहीं, तो वह अंगुल का असंख्यातवा भाग है। इसी से यहाँ वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर उक्त प्रमाण कहा है, यानी उसके जो स्वामी बताए वो तो पहले भव में शुरुआत में और अंत में, काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में जघन्य स्थिति का बंध कराकर यह अंतर ले आवे। काय स्थिति लिखा ना, जघन्य अनुभाग का चाहिए स्थिति का नहीं। स्थिति का के बदले जघन्य अनुभाग का बंद कराकर वो लिखा आपने
नहीं।
देखो लास्ट लाइन क्या है, काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में मिला, मिला कि नहीं, काय स्थिति के प्रारंभ में और अंत में जघन्य अनुभाग का चाहिए, स्थिति का लिखा है ना, जघन्य अनुभाग का बंध कराकर यह अंतर ले आवे, इसलिए कुछ कम अंगुल का असंख्यात अभाव बता दिया। शेष कथन सुगम है, इस प्रकार अंतरकाल समाप्त हुआ। पहले उत्कृष्ट का देखा, फिर जघन्य का देखा, अभी नई प्ररूपणा कल से देखनी है कि शुरू करनी है, 5 मिनट है ना, कितना टाइम है अभी, 5 मिनट चालू करते हैं फिर कल, वैसे तो रिवीजन होती है। हाँ करना ही, अभी हम देख लेते। देखो संन्यकर्ष प्ररूपणा ये 15 नंबर की है, अनुयोग 15वां। हाँ वहाँ उन्होंने लिखा ही है, वैसे तो हम हर बार सोचते आए थे। संन्यकर्ष का अर्थ समझते हैं, संधिकर्ष यानी निकटता, निकटता यानी एक। अभी यहाँ तो उत्तर प्रकृति में देखना है, पहले में पहले पूछेंगे एक प्रकृति बनती है तो दूसरी बनती है कि नहीं बनती, और बनती है तो एक का भी। हाँ अभी क्या कहेंगे, जिसका उत्कृष्ट बंद हो रहा है तो उस समय अन्य प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी, एक बात बंधेगी तो उत्कृष्ट बनती कि अनुत्कृष्ट बनती, भाई इतना ही। अब मैं आपको पूछती हूँ, जहाँ चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट बंद हो रहा है वहाँ अन्य कर्मों का उत्कृष्ट हो रहा है कि अनुत्कृष्ट हो रहा है? कैसे? चार घाती का उत्कृष्ट कहाँ है? संक्लेश में। और वेदिनी नाम का उत्कृष्ट कहाँ है? एक शपक में। यानी बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसा हो रहा है? अनुत्कृष्ट ही हो रहा है। अभी एक घाते नहीं, चार घाते में एक ज्ञानावरण का कहेंगे,
तो ज्ञान कर्म का कोई है तो बांध सकते हैं ना, नहीं तो ऊपर है
जो स्वामी जिसका एक है वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी कहेंगे वहाँ पर, जिसके स्वामी ही एक है उसको उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध में लगा लेंगे, परंतु जो एक का स्वामी है मिथ्या दृष्टि सर्व संक्लेश और एक है शपक वाला तो उसमें तो कहेंगे अनुत्कृष्ट ही बन रहा है। देखो थोड़ा सा दो चार लाइन पढ़ते। सन्निकर्ष दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है यानी हम एक का उत्कृष्ट है तो अन्य क्या बनती है कि नहीं बनती, बनती तो कैसे बनती है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुभाग बंद, अनुभाग का बंद करने वाला जीव, मूल प्रकृतियां लेनी है, दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय का नियम से बंद करता है, बाकी का भी करता है परंतु यहाँ वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगाना है ना, तो चार घाती का पहले अपरस में बताते हैं। एक का करता है तो अन्य तीन नियम से बनते हैं, किंतु वह छह स्थान पतित बांधता है। देखो अनुभाग में क्या होता है मालूम है, अनुभाग कितना बनता है तो अनुभाग का बंध तो उसके अभिभाग प्रतिच्छेद अनंतों में होते हैं। जब हम स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति कितनी भी बंधे तो उसमें डिफरेंस कितना होता है एक समय से लेकर असंख्यात समयों का। तो जब हमने, आपको याद होगा, जहाँ एक की उत्कृष्ट स्थिति बनती है, जैसे ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति कहाँ बनती है तो मिथ्या सर्व संकुलित, तो एक ज्ञानावरण का जो बनता है तो दूसरे का कैसा बंधेगा, उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट? तो अनुत्कृष्ट कहाँ तक? एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यातवे भाग तक, कि उसमें कितने कितने पॉसिबल है, कितने स्थान पतित हो गए, असंख्यात व भाग या संख्यात व भाग, इस तरह से हो सकता है ना, ये सब सब मिलकर असंख्यात वाला भाग होता है, असंख्यात वाला ही भाग होता है, क्योंकि पल्ले का असंख्यात वाला भाग 30 कोड़ा कोड़ी की अपेक्षा असंख्यात वाला, ये अनुभाग के छह स्थान पतित होते हैं, यानी वो अनंत वा भाग होता है, असंख्यात वाला भाग या संख्यात वाला भाग, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा या अनंत। हाँ देखो क्या कहते हैं, अगर अनुत्कृष्ट कहने तो अनंत गुणाहीन कहना पड़ेगा, अनंतवा भागहीन गुणाहीन करो, क्योंकि उत्कृष्ट के साथ लगाना है ना,
अनुभव के छह स्थान में पहला अनंत भाग।
देख फिर से देखो, ओग से ज्ञानावरण के उत्कृष्ट बंद करने वाला जीव वगैरह वगैरह के वह छह स्थान पतित बांधता है। छह स्थान पतित में क्या क्या लेना है? अनंत, देखो एक तो उत्कृष्ट बताए, उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट भी बन सकता है या अनुत्कृष्ट भी बनता है, तो अनुत्कृष्ट बनेगा क्या हुआ, अनंतवा भागहीन बनेगा या असंख्यातवा भागहीन, संख्यातवा भागहीन, संख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन, अनंत गुणाहीन।
अनुत्कृष्ट के लिए ही है ना,
उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट छह स्थान, छह स्थान पति हीन कहना पड़ेगा उनको। कल फिर पढ़ेंगे भी इसको, सन्निकर्ष से शुरुआत करते, शुरुआत से है हाँ हाँ ये शरसान पतित वृद्धि हानि देखते ना, या तो एक को उत्कृष्ट लिया तो दूसरे को वृद्धि तो नहीं ले सकते, हानि ही लेनी पड़ेगी। जघन्य के साथ लेंगे तो छह स्थान पतित वृद्धि कहना पड़ेगी, उत्कृष्ट के साथ हानि कहनी पड़ेगी। ये कल लेक्चर नंबर 20 है ना, यहाँ दो लेक्चरों का डिफरेंस पड़ा है अपना। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।